नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। 21वीं सदी का गंगा अवतरण।
जी
ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने 1988 से 90 के दौरान लिखी थी
जी
और ये उनकी क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला का एक अहम हिस्सा है।
हाँ, ये पुस्तकमाला तो बहुत ही खास थी उनके लिए।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव ने तो जैसा कि आपने कहा इसे बहुत महत्व दिया। 1990 में वसंत पंचमी पर उन्होंने वंदनीय माताजी से कहा भी था।
हाँ, कि मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा।
सही कहा। और उन्होंने आग्रह किया कि इस ज्ञान शरीर को, मतलब उनके इस क्रांतिधर्मी साहित्य को, सब लोगों तक पहुंचाया जाए।
जी, जन जन तक।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पुस्तक के जो गहरे विचार हैं और 21वीं सदी को लेकर जो उनकी दृष्टि थी उसे थोड़ा समझें।
जरूर।
चलिए शुरू करते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने ये माना कि भाई पिछली कुछ सदियों में विज्ञान ने तो कमाल की तरक्की की है।
हाँ, वो तो है, अभूतपूर्व विकास हुआ।
लेकिन वो इस बात से चिंतित थे कि इस ज्ञान का, इस साइंस का सही इस्तेमाल नहीं हुआ।
बिल्कुल, वो उदाहरण देते थे जैसे प्रदूषण का या ये घातक हथियार जो बन गए।
और मानवीय मूल्यों में गिरावट।
उनका कहना था कि इन सब के चलते इंसान वो पुराने जमाने से भी ज्यादा दुखी और परेशान हो गया है।
हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। गुरुदेव समस्या की जड़ बाहर कम देखते थे, इंसान के अंदर ज्यादा।
अच्छा, किस तरह से?
वो इसे कहते थे विचार विकृति, आस्था संकट और कुविचारों का साम्राज्य। मतलब हमारी सोच बिगड़ गई है, विश्वास डगमगा गया है और नेगेटिव विचारों ने कब्जा कर लिया है। यही उनके हिसाब से असली कारण है सारे दुख तकलीफ का। ये एक अलग नजरिया था उस समय।
तो अगर समस्या अंदर है, विचारों में है, तो फिर इसका हल क्या सुझाया उन्होंने?
हल्के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, विचार क्रांति।
विचार क्रांति?
हाँ, मतलब एक तरह का अभियान, अपनी गलत सोच, अपनी जो हानिकारक मान्यताएं हैं उनके खिलाफ लड़ना।
और उनकी जगह मानवीय गरिमा, अच्छे विचार, सकारात्मक सोच को अपनाना, सही ढंग से जीना।
यानी सिर्फ सोचना नहीं, करना भी है।
बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया, रास्ता बताया।
जैसे
देखिए, उन्होंने खुद अपना जीवन एक मिसाल की तरह पेश किया। फिर पत्रिकाएं निकाली, अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना।
हाँ, बहुत प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं ये।
जी, और करीब 1500 पुस्तकें लिखीं। फिर शांति कुंज जैसे संस्थान बनाए। ये सब क्या था? लोगों की सोच को बेहतर बनाने का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था।
और ये साहित्य लोगों तक पहुंचाया कैसे?
बहुत सरल तरीकों से, लागत मूल्य पर देते थे, झोला पुस्तकालय, ज्ञान रथ, इनके जरिए घर घर तक पहुंचाया।
इसी सिलसिले में दीप यज्ञ का भी जिक्र आता है, वो क्या था?
हाँ, दीप यज्ञ। ये एक बहुत ही सरल पर बहुत असरदार तरीका था। इसके जरिए कार्यकर्ता गांव गांव, घर घर जाते थे, लोगों को जगाने का, अच्छे विचारों का संदेश देने का काम करते थे।
अच्छा।
और साथ ही उन्होंने ऐसे कार्यकर्ता तैयार करने पर भी बहुत जोर दिया जो समाज सेवा के लिए समर्पित हो। जैसे पुराने जमाने में वानप्रस्थी होते थे ना?
हाँ, जो जीवन का एक हिस्सा समाज को देते थे।
बिल्कुल, वैसे ही शांति कुंज में तो ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता रहते भी थे।
आपने शुरू में नए योग की बात की थी, पूज्य गुरुदेव ने भविष्य के बारे में क्या कुछ कहा?
हाँ, उन्होंने 1989 से लेकर 2000 तक का जो 12 साल का समय था उसे युग संधि काल कहा।
युग संधि
मतलब एक संधि काल, एक ट्रांजिशन का पीरियड, जहाँ पुरानी जो खराब चीजें हैं वो खत्म होंगी और 21वीं सदी के एक अच्छे भविष्य की, उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाएगी।
अच्छा, एक बदलाव का दौर।
हाँ, उनका मानना था कि प्रकृति या कहिए दैवी विधान चीजों को एक हद से ज्यादा बिगड़ने नहीं देता, संतुलन वापस आता है।
और ये जो 21वीं सदी है ये कैसी होगी? उन्होंने कुछ भविष्यवाणियों का भी जिक्र किया था शायद।
जी हाँ, किया था। उन्होंने कई भविष्यवक्ताओं का जिक्र किया, जैसे नेस्टोडामस, जीन डिक्सन, महर्षि अरविंद।
और क्या कहा इनके हवाले से?
उन्होंने कहा कि इन सब ने यही संकेत दिया है कि 21वीं सदी सत्य, समता यानी बराबरी, एकता और शांति का युग होगी।
और इसमें भारत की भूमिका?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इस नए युग के आने में भारत की भूमिका केंद्रीय होगी, सेंट्रल रोल होगा। जैसे नेस्टोडामस ने कहा था कि सत्य का युग भारत से शुरू होगा।
ये तो बहुत बड़ी बात है। इस बड़े बदलाव के लिए, इस नए युग के लिए उन्होंने किन चीजों को सबसे जरूरी माना?
देखिए, दो चीजें बहुत मुख्य थीं। एक तो विज्ञान और अध्यात्म का मेल,
मतलब साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ।
हाँ बिल्कुल, बाहरी तरक्की हो लेकिन साथ में अंदरूनी समझ, आत्मिक विकास भी हो। और दूसरी चीज जिस पर उन्होंने खास जोर दिया वो था नारी जागरण।
नारी जागरण
जी, उनका पक्का विश्वास था कि स्त्रियों की शक्ति का जागना, उनका आगे आना इस नए युग का एक बहुत बड़ा लक्षण होगा।
और इसके लिए भी कुछ किया गया।
हाँ, शांति कुंज ने हजारों दीप यज्ञों के जरिए स्त्रियों में शिक्षा, स्वावलंबन और जो गलत रीतियां थीं उन्हें हटाने का बहुत उत्साह जगाया।
पर शांति कुंज की अपनी भूमिका क्या थी इस सब में?
पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज को इस पूरे बदलाव की आध्यात्मिक गंगोत्री कहा।
गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकलती है।
हाँ बिल्कुल, मतलब जहाँ से ज्ञान और प्रेरणा की धारा बहेगी पूरे देश, पूरे दुनिया के लिए।
और वो जो 1989 से एक 12 साल का कार्यक्रम शुरू हुआ था
जी, युग संधि महापुरुषरण, वो इसी बड़े लक्ष्य का एक हिस्सा था। करोड़ों लोगों की सामूहिक साधना, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा इसी युग परिवर्तन के लिए थी।
ये तो बहुत ही विशाल योजना लगती है। क्या उन्हें ये विश्वास था कि ये सब सच में होगा, खासकर उनके शरीर छोड़ने के बाद भी?
उनका विश्वास अटूट था। वो मानते थे कि ये सब दैवी सत्ता की, महाकाल की योजना है और ये उन्हीं के सूत्र संचालन से हो रहा है।
तो उनके बाद भी ये चलता रहेगा?
बिल्कुल, उन्होंने अपने स्थूल शरीर में न रहने पर भी काम कैसे जारी रहेगा इसकी पूरी व्यवस्था पहले ही कर दी थी। साहित्य लिख दिया, नेतृत्व तैयार कर दिया। वो कहते थे ये होकर रहेगा, माध्यम कोई भी बने।
तो कुल मिला के देखें तो ये पुस्तक सिर्फ भविष्य बताती नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का एक्शन प्लान है, एक आवाहन है।
हाँ, एक पुकार है कि उठो, जागो।
सही कहा, विचार क्रांति करो, खुद को सुधारो, समाज की सेवा करो और इस बेहतर भविष्य को बनाने में अपना हिस्सा डालो। ये एक निमंत्रण है सक्रिय भागीदारी का।
और ये वाकई हमें आज के लिए सोचने पर मजबूर करता है। हम 21वीं सदी में हैं।
जी,
तो आज के समय में व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर भी अपने विचारों को शुद्ध रखना, पॉजिटिव सोचना और कुछ अच्छा, कुछ रचनात्मक करना कितना जरूरी है।
बहुत ज्यादा, खासकर जब हम अपने समय की चुनौतियों को देखते हैं और संभावनाओं को भी। ये सवाल हम सबके लिए है।